सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुण मीणमो सुदकेवलीवणिदम्
यह कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के हम 46 नंबर की गाथा को देख रहे हैं और इस 46 नंबर की गाथा में स्वामी जी जो उसके ऊपर टीका कर रहे हैं उसकी बात हम देख रहे हैं। यहाँ पर 46 नंबर की गाथा में ये बताया गया है कि यह जो व्यवहार नए है वह पुद्गल का है ऐसा कहा गया था, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने उस व्यवहार नए का भी उपदेश दिया है और आगम में भी उसका उपदेश बारंबार मिलता है। हाँ जी,
राग को पुद्गल कहा था व्यवहार नए से।
हाँ, तो मैंने क्या कहा?
व्यवहार नए पुद्गल का कहा है।
हाँ, गलत हुआ। यहाँ कह रहे हैं कि जो अध्यवसान आदि जो भाव जिसको हमने राग द्वेष के परिणाम कहा था वे पुद्गल के है ऐसा पहले गाथा में बताया और इस गाथा में वे परिणाम जीव के है ऐसा जिनेंद्र भगवान ने बताया ये बात बताई। तो ये दोनों परस्पर विरुद्ध बातें क्यों हैं? तो दोनों ही जुदे जुदे नए से ऐसी बात कही गई थी। जो पहले में कहा था वो पुद्गल में है ये राग द्वेष के परिणाम अध्यवसान आदि भाव, वह तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात बताई है और वे जीव के है ऐसी जो बात बताई जा रही है वो व्यवहार नए से है। दोनों ही नयों की अपेक्षा से ये कथन हमारे ख्याल में आएगा तो उससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रडिक्शन है ऐसा नहीं लगता है। अब ये बात बताते बताते हम पृष्ठ क्रमांक 49 पर आए, 49। देखो देखो ये नीचे से जो बड़ा पैराग्राफ है बीच में करीबन वहां से शुरू करते हैं। जे करवाथी भवनो अभाव न थाय ए शू कामनो, पहले बताया था ना। हाँ, पहले कलश आई थी ना, कलश आया था वहां कहते कि अलम अभी बस थाओ बस थाओ, ये जो कोई अन्य बातें हैं उससे आप अभी विराम लो विराम लो। एक ही है जे करवा, विराम लो यानी बस थाओ। जे करवा थी भवनो अभाव न थाय ए शु कामनु, यानी आप ऐसी ही बात सोचो ऐसी ही बात करो कि जिससे ये जो अपने भव आने वाले हैं उसका अभाव हो सके। ये कैसा पॉसिबल है कि अपने स्वरूप की पहचान कर उसी में एकाग्रता कर अपना स्व अनुभव करे तो ये बात चालू हो जाती है। भवनो अभाव तो एक द्रव्य ना, एटले शुद्ध द्रव्य ना आश्रय थाय छे तथा ए भवनो अभाव थयो थवो मोक्ष थवो के मोक्ष मार्ग प्रकटवो ए बधो व्यवहार छे, क्योंकि ये सब पर्याय हैं। ये संसार जो है वह भी पर्याय है, ये मोक्ष है वह भी पर्याय है और ये मोक्ष मार्ग है वह भी पर्याय है, इसलिए उसको व्यवहार कहा गया है। भेद कर रहे हैं ना। 11મી ગાથામાં કહ્યું ને કે વ્યવહારો અભૂત થો, વ્યવહાર બધો અભૂતાર્થ છે, પર્યાય માત્ર અભૂતાર્થ છે, તેમાં એમ લીધું છે કે વ્યવહારને બધો અભૂતાર્થ હોવાથી અભૂત અર્થને પ્રકટ કરે છે. અભૂત અર્થ એને જો હૈ નહીં એસે અર્થ કો વહાં પ્રકટ કરતા હૈ. એ વ્યવહારના ચાર પ્રકાર છે, અનુપચરિત, સદભૂત વ્યવહાર. યહાં ક્રમ જુદા દિયા હૈ, પહેલે જો હમને દેખા થા યે વ્યવહાર ને કે જો ચાર ભેદ દેખે થે વહ તો આગમ કી અપેક્ષા સે થે, યહાં જો યે ચાર વ્યવહાર ને હૈ વો અધ્યાત્મ કી અપેક્ષા સે બતાએ ગયે હૈ. વહાં તો દો ભિન્ન દ્રવ્યો કી બાત થી, યહાં તો યે આત્મા મેં હી લગેંગે. ક્યા કહે રે દેખો, અનુપચરિત સદભૂત, નામ તો દોનો કે એક હૈ, અનુપચરિત સદભૂત વ્યવહાર, ઉપચરિત સદભૂત વ્યવહાર, અનુપચરિત અસદભૂત વ્યવહાર ઓર ઉપચરિત અસદભૂત વ્યવહાર. એ બધો વ્યવહાર છે ખરો, યાને વો હૈ ઇસકા એસ્ટેબ્લિશમેન્ટ કર દી, તે જાણેલો પ્રયોજનવાન છે. જાણેલો પ્રયોજનવાન એને જાનને યોગ્ય હૈ, જાનને કે લીએ હી હૈ, આદરેલો પ્રયોજનવાન નથી, યાને વહ આશ્રય લેને યોગ્ય એસા યહ વ્યવહાર ને કે જો ભેદ હૈ વે નહીં હૈ. એ ચાર વ્યવહારની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે. અભી યહાં એ અધ્યાત્મ કે નય બતા રહે. દેખો, જ્ઞાન તે આત્મા એમ કહેવું એ પણ ક્યાં હૈ, વ્યવહાર નય હૈ. કેસા વ્યવહાર નય હૈ, અનુપચરિત સદભૂત વ્યવહાર છે. અનુપચરિત યાને જિસમે કિસી ભી પ્રકાર કા ઉપચાર નહીં હૈ, વાસ્તવિકતા હૈ, સચ બાત હૈ, ફિર ભી ઉસમે ભેદ હૈ. ક્યા કહા, જ્ઞાન તે આત્મા, દો ભિન્ન હૈ ને, જ્ઞાન જુદા હૈ ઓર આત્મા જુદા હૈ, ફિર ભી જ્ઞાન કો હી આત્મા કહેના, યે અનુપચરિત સદભૂત વ્યવહાર છે. જ્ઞાન તે આત્મા એમ કહેતા ત્રિકાળી જ્ઞાયકમાં ભેદ પડ્યો, તેથી વ્યવહાર. એટલે એટલા માટે ભેદ પડ્યો તેના કારણે એને વ્યવહાર કહેવામાં આવ્યો. અને જ્ઞાન આત્માનું છે અને તે આત્માને જણાવે છે, માટે અનુપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર. આગે એ સમજમાં આવ્યા? હા, અધ્યાત્મ મેં ઓર આગમ મેં ફેર ક્યા હૈ? આગમ મેં હમને બતાયા થા કે યે મેરા ઘર હૈ, તો ઘર બહાર કી વસ્તુ થી ના, તો ઉસકો યે દો દો ભિન્ન દ્રવ્યો મેં ઉસકા સંબંધ બતાના, યે આગમ કી વાત હોઈ. ઓર અધ્યાત્મ મેં જો આત્મા કે હી અંદર જો નય લગતે હૈ, લેકિન વો ભેદ કરકે સમજા રહે હૈ, ઇસલિયે ઉસકો અધ્યાત્મ કે નય કહે. તો યે જ્ઞાન ઓર આત્મા એસા ભેદ કિયા ને સમજાને કે લિયે, લેકિન વો ભેદ હૈ તો બાત સચ્ચી, ઇસલિયે ઉસકો અનુપચરિત કહા. ઓર જો સદ્ભૂત યાને જો હૈ, ઇસલિયે ઉસકો સદ્ભૂત કહા. ઓર વો ભેદ કરકે સમજા રહે ઇસકે ઇસકે લિયે વ્યવહાર કહા, ઇસલિયે ઉસે અનુપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર કહને મેં આયા. કિસકો કહા? જ્ઞાન તે આત્મા. અબ જ્ઞાન રાગને જાણે છે એમ કહેવું તે ઉપચરિત સદભૂત વ્યવહાર છે. પહેલા કૈસા થા? અનુપચરિત થા, ઓર યે હૈ ઉપચરિત. યે ઉપચરિત ક્યા કહેતે, કિસ લિયે કહેતે હૈ? જ્ઞાન રાગને જાણે છે, એમાં જાણનારું જ્ઞાન પોતાની પર્યાય છે, માટે સદભૂત, અને ત્રિકાળીમાં ભેદ પાડ્યો માટે વ્યવહાર. અને રાગ જે પર છે, પોતાના સ્વરૂપમાં નથી, તેને જાણે છે તે ઉપચાર. આ પ્રમાણે જ્ઞાન રાગને જાણે છે એમ કહેવું ઉપચરિત સદ્ભૂત વ્યવહાર છે. અભી હમને જરા પુસ્તક કે તરફ ન દેખતે હુએ અભી બતાના કે પહેલા વ્યવહાર ને કા ભેદ અભી આજ જો હમને દેખા वो पहला कौन सा था? जोर से, अनुपचरित असद्भुत था, सद्भुत था। उसका उदाहरण क्या दिया था भाई? हाँ, ज्ञान वे ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान एज आत्मा चलेगा। हाँ, अभी दूसरा कौन सा देखा था बहन? उपचरित सद्भुत व्यवहार, उसका उदाहरण हमने क्या देखा था? हाँ, बहुत अच्छा। यानी यहाँ गुजराती में लिखा है ज्ञान राग ने जाने छे, आपने सही बताया कि ज्ञान राग को जानता है। देखो देखो अभी क्या हो गया, ये जो जानने वाला जो है वह तो ज्ञान है, लेकिन वो पर को जान रहा है इसलिए उसको उपचरित कहा। ख्याल में? देखो फिर से, हमें कोई घाई नहीं, ये समझेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और भाग गया। देखो पहला तो फिर से पढ़ूंगा मैं, नहीं दूसरा नंबर का पहला पढ़ूंगा। ज्ञान राग ने जाने छे एम केवू, ये कहने, देखो नए हमेशा क्या कहते हैं, बोलने में आते हैं या ज्ञान में होते हैं, दोनों। ज्ञान की बात तो अभी यहां नहीं, या कथन में जो आएंगे उसकी बात करेंगे। तो कहते हैं ते उपचरित, यानी उपचार किया है, पर को जानता है फिर भी ज्ञान कर रहा है, इसलिए उसका सद्भुत हो, उपचरित हुआ। सद्भुत यानी वो है इसके लिए उसको सद्भुत, और वो पर को जानता है इसलिए भेद करके बताया, इसलिए व्यवहार। अभी देखते हैं, ज्ञान राग ने जाने छे एमा जाननारु ज्ञान पोतानी परिये छे, माटे सद्भुत छे, ते पोतानी छे ते तेथी सद्भुत। अने त्रिकाळी मा भेद पाड्यो माटे व्यवहार, अने राग जे पर छे पोताना स्वरूप मा नथी तेने जाने छे ते उपचार छे। अब यहां उपचार क्यों कहा गया है कि वास्तव में ज्ञान की जो पर्याय है वह पर्याय अपने को ही जानती है, लेकिन वो किसको जानती है कहना है तो राग को जानती है ये कह रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर उपचार हुआ। अब पहला जो था वो तो सिंपल है, ज्ञान ते आत्मा, तो उसमें भेद किया, त्रिकाळी मां भेद पड़ियो तेथी ते व्यवहार छे, अने ज्ञान आत्मानु छे अने ते आत्माने जणावे छे माटे अनुपचरित, वो ज्ञान ही आत्मा को बता रहा है इसलिए वो हो गया अनुपचरित, और वो सद्भुत व्यवहार। अब तीसरा नंबर, आत्मानी पर्याय मा जे राग छे ते सत रूप आत्म वस्तु, ते शुद्ध सत रूप आत्म वस्तु मा नथी। क्या कह रहे हैं? अभी यहां जो राग है वो कहां है पहले बताया कि पर्याय में जो राग है वो अपने त्रिकाली जो शुद्ध सत स्वरूप ऐसा जो आत्मा है उसमें नहीं है, इसलिए क्या कहा, उसे असद्भूत कहा। वाक्य कौन सा था? आत्मानी पर्याय मां जे राग छे ते शुद्ध सत रूप आत्म वस्तु मां नथी, ये पूरा वाक्य हुआ। अब कहते ते थी असद्भूत छे, भेद पाड़ियों माटे व्यवहार छे, अने ज्ञान मां स्थूलपणे जणाय छे तेथी उपचरित छे। आ रीते स्थूल राग ने आत्मानो कह्यो ते उपचरित असद्भूत। यहां तो इधर इतना तक ही चाहिए, आत्मानी पर्याय में जे राग छे तेने आत्मा जाने छे ऐसा चाहिए था। हाँ बुझो, और वो शुद्ध वस्तु में नहीं है तेथी असद्भूत, ये यहां से लेना चाहिए। चलो देखो देखो क्या कह बताना क्या चाहते हैं, आत्मानी पर्याय में जे राग छे ते ज्ञान में स्थूलपणे जणाय छे, ते ज्ञान में जणाय छे तेथी ते उपचरित छे, अने स्थूल राग ने आत्मानो के वो ते उपचरित असद्भूत व्यवहार छे। यहां बीच में कहीं कट हुआ है, अभी यहां क्या बताएं, मैं थोड़ा सा रफली आपको बताऊंगा कि यहां जो जानने में आने वाला राग जो है उसको स्थूल राग कहा, और जो नहीं जानने में आने वाला राग है उसको जो सूक्ष्म राग है उसको यहाँ अनुपचरित असद्भूत व्यवहार कहा है। देखो फिर से पढ़ते हैं, आत्मानी पर्याय में जो राग छे ते शुद्ध सत्रूप आत्मवस्तु में नहीं, इसके लिए उसको असद्भूत कहा। अने भेद पाड़ियो कि आत्मा राग को जानता है इस तरह से ते व्यवहार छे, अने ज्ञान में स्थूलपने जणाय छे तेथी उपचरित छे। पहले तो क्या है, आत्मा वही ज्ञान है वो अनुपचरित था, और ये पर को जान रहा है इसलिए उसको उपचरित कहा। एवी रीते स्थूल राग ने आत्मानो केवो ते उपचरित असद्भूत व्यवहार छे, यानी है नहीं फिर भी उसका कहना इसलिए असद्भूत। तथा जे सूक्ष्म अबुद्धिपूर्वक नो रागांश जे वर्तमान ज्ञान में जणा तो नथी ख्याल में आवतो नथी ते अनुपचरित असद्भूत छे। ये उन्होंने चार भेद उनके बताए। अभी अगले दो जो भेद हैं वो कौन से हैं अरविंद भाई आप बताएंगे?
अभी जो
बताएंगे, हाँ लास्ट टू,
जो सूक्ष्म रूप से जानने में आता है, स्थूल रूप से जानने में आता है वो है उपचरित असद्भूत व्यवहार।
बहुत अच्छा।
और जो सूक्ष्म बुद्धिपूर्वक जानने में नहीं आता है उसको बोलते हैं अनुपचरित
बहुत अच्छा।
बीच में राग शब्द डालना।
स्थूल रूप जो राग है जो ज्ञान की पर्याय में
जाने बराबर बताया अपने, पर बीच में राग शब्द रह गया।
कोई बात नहीं, अभी देखो क्या बताया फिर से देखेंगे। जो आत्मा है या जो ज्ञान है उसकी पर्याय में जो राग है उसको आत्मा जानता है, क्योंकि या तो कहो कि राग आत्मा का है ऐसा जो बात बताई है, उसमें क्या हो गया कि उसमें कहते हैं उसको उपचरित असद्भूत व्यवहार ने कहा। और जो अबुद्धिपूर्वक राग है और वो अबुद्धिपूर्वक राग जानने में तो नहीं आ रहा है फिर भी उसको आत्मा का कहना, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने है। इस तरह से आगम के अध्यात्म के चार व्यवहार ने की बात हमने देखी। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं देखो, नीचे से थर्ड फोर्थ लाइन, ते व्यवहार बधोए अभूतार्थ हुआ थी अभूत अर्थ ने प्रकट करे छे। शुद्ध ने भूतार्थ हुआ थी, भूत यानी जो है विद्यमान है और अभूत यानी जो विद्यमान नहीं है। अर्थ ने एटले छता, छता यानी जो है, त्रिकाड़ी पदार्थ ने प्रकट करे छे। व्यवहार अभूतार्थ छे तेथी व्यवहार छेज नहीं एम नहीं, यानी क्या व्यवहार छे है उसी का निषेध करेंगे ना तो क्या कहते हैं, पन व्यवहार आश्रय करवा योग्य नथी तेथी हे ये छे। यानी मूल बात क्या बताई है, ये चार प्रकार के जो व्यवहार है उनको आश्रय करने योग्य नहीं है इस अपेक्षा से उसको होते हुए भी अभूतार्थ कह दिया। ये अभूतार्थ कहने से ये चारों ही प्रकार के जो व्यवहार नए हैं वे है नहीं ऐसी बात नहीं है, है पर वह आत्मा को प्राप्त करने के लिए कोई कार्यकारी नहीं है इसलिए वे आश्रय करने योग्य नहीं है। तो किसी के मन में ऐसा प्रश्न आएगा, फिर ये काय को हमको बता रहे हैं आप जिससे हमें कोई फायदा नहीं है, तो कहेंगे भाई जब तक तू ये व्यवहार नए के माध्यम से तू आत्मा के बारे में नहीं सुनेगा तब तक तुझे आत्मा का सही स्वरूप नहीं समझ में आएगा। और इस बात को उन आगे बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं कि जैसे म्लेंच को म्लेंच की भाषा में समझाना चाहिए वैसे व्यवहारी जनों को व्यवहार नहीं की बात समझानी चाहिए, तब वह जानेगा, लेकिन वो जानेगा लेकिन उसका आश्रय नहीं करेगा और उसको निषेध करेगा, और व्यवहार ने का निषेध करना ही योग्य है कि उनकी उपेक्षा करना यही व्यवहार ने की अपेक्षा है ऐसा कहते हैं। अब वो सारी बातें आपको बताएंगे यहाँ पर। देखो
यहाँ ज्ञान स्थूल राग को जानता है, ये कौन सा नहीं हुआ? हाँ, दो पार्टी हो गई, कोई कहते सद्भुत और कोई कहते असद्भुत। हाँ, कौन सा हुआ? स्थूल राग। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, उपचरित सद्भुत। तो ज्ञान, ज्ञान तो हमेशा स्थूल राग को ही जानेगा, बुद्धिपूर्वक तो जानता ही नहीं है। परंतु राग को आत्मा का कहना, ये असद्भुत में चला जाएगा। स्थूल शब्द में है वो दूसरे में भी जानबूझ कर डाला है। ज्ञान राग को जानता है कहो या स्थूल राग को जानता है कहो, एक ही बात है। वो दूसरा पॉइंट हुआ उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, बराबर पुस्तक में देख के बराबर करना। ज्ञान राग ने जाने छे, बराबर। मैंने एक शब्द बीच में और डाला, स्थूल राग ने जाने छे। सूक्ष्म राग ने तो जानतो ज नथी ने, तो ज्ञान राग ने जाने छे एम केवू, वो क्या हुआ? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। अब जो राग आत्मा का है ही नहीं, फिर भी उसको आत्मा का कहना, ये तीन नंबर का उपचरित असद्भुत। और अबुद्धिपूर्वक जो राग अंश है, जो ख्याल में आवतो नहीं, उसको आत्मा का कहना। ये वाक्य के बीच में आपने जो पूछा था ना, देखो चौथा नंबर का पॉइंट ऐसा होगा, सूक्ष्म अबुद्धिपूर्वक नो रागांश जो लिखा है वहां मैं पढ़ रही हूँ, जे वर्तमान ज्ञान में जनातो नथी, ख्याल में आवतो नथी, तेने आत्मानो केवो। ये इतने तीन, हाँ, यानी स्थूल राग को आत्मा का कहना, वो तो हुआ उपचरित असद्भुत। और सूक्ष्म जो बुद्धि में भी नहीं आता है, अबुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कहना, ये फिर अनुपचरित हो जाएगा। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने पूरा, हाँ पूरा नाम उसका। ख्याल है, राग को हमने पर में डाला, अध्यात्म की अपेक्षा चल रही ना, राग को पर में डाला, पर होता हुआ भी उसको आत्मा का कहना, ये हो गया वहां, हाँ असद्भुत हुआ। ग्यारहवीं गाथा में जब हमने आगम के देखे थे तो पर पदार्थों को असद्भुत में डाला था, उसमें अत्यंत भिन्न और फिर नजीक वाले भिन्न है शरीर, ऐसे दो भेद किए थे। और बाकी राग हो या ज्ञान हो, वो सारा सद्भुत में लिया था, आत्मा के गुणों में लगाया था वहां। वो आगम का आपका प्रश्न था ना, आगम और अध्यात्म क्या। यहाँ जो नए है वो एक ही जीव पदार्थ पर ही लगे है, भिन्न द्रव्य की बात ही नहीं है। पंचाध्यायकार कहेंगे नए तो एक ही द्रव्य को देखने वाले एंगल है, दो द्रव्यों को मिलाकर नए लगाते वो तो हमको मान्य नहीं है, ऐसा कहेंगे। नया भास कहा वहाँ,
मिथ्या नहीं कहा, नया भास कहा।
ख्याल है, क्योंकि नए की परिभाषा ही एक ही द्रव्य को अलग अलग अपेक्षाओं से या एंगल से देखता है, वो नए है। तो इसलिए वहां जो अध्यात्म की बात चल रही है, हमको परद्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है। एक ही द्रव्य में राग को जुदा करके उसको पर कहना, ये बात यहाँ हो रही है। अभी पुरन पोली खा रहे हैं ना, ये पहले वाली वो सब हमेशा बोल, अब अरविंद भाई को पता नहीं चला, यानी आप अभी बहुत सीनियर हो गए हैं, इसलिए ये नई की भाषा है। इनकी भाषा में बच्चे को तो सीरियल खिलाते और बड़ों को पुरन पोली खिलाते। नहीं समझ में आए तो भी सुनना, एक दो दफे सुनेंगे तो ख्याल में आ जाता है। नहीं समझ में कोई चिंता नहीं करना। आप आगे पढ़ेंगे।
हाँ देखो, यहाँ पर पहले तो ज्ञान और आत्मा, आत्मा और ज्ञान, इसमें भेद किया, तो भेद करने से उसको व्यवहार कहा। और दोनों वही, मतलब जो ज्ञान है वह आत्मा का ही है, इसलिए वो आत्मा को ही हमें इंडिकेट करता है, इस अपेक्षा से उसे अनुपचरित, यानी वहाँ उपचार कुछ है नहीं, ज्ञान वही आत्मा है, इसके लिए उसको अनुपचरित, और जो है उसी को बात बताता है, इसलिए वो सद्भुत है, भेद किया, इसलिए उसको व्यवहार किया। तो जो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरा क्या कहते हैं, ज्ञान। अभी पहले तो आत्मा ज्ञानते आत्मा, यानी एक ही में दो भेद किए। अभी कहते हैं ज्ञान किसको जानता है, आत्मा को जानने की बात नहीं है। ये ज्ञान राग ने जाने चेम केवू, तो अभी ये तो ज्ञान और आत्मा उसका स्वभाव, राग उसका विभाव है कहो, इसलिए उसको पर में डाल दिया, इसलिए वो उपचार से है। ज्ञान राग ने जाने छे एम केवू, वो क्या हुआ, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। अब तीसरी बात में क्या आ गया कि जो स्थूल राग है, वह स्थूल राग जो है वह आत्मा की पर्याय में जो है उसकी बात ली, तो वो जो है वह है कि उपचरित असद्भूत व्यवहार। और चौथा जो है वो सूक्ष्म राग को आत्मा का कहना कहो, या आत्मा में है ऐसा कहना, वह है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। इस तरह से ये चार भेद बताए। अब यहाँ एक बात नक्की ध्यान में रखना, ये व्यवहार नय का जो कथन है उसको शास्त्र में अभूतार्थ, यानी वो कुछ सच्चा नहीं है कहो, या विद्यमान ही नहीं है ऐसा कहने में आ रहा है। लेकिन जो व्यवहार नय है, है वो नहीं है, यानी जो नहीं होगा उसका निषेध कौन करेगा। जो कोई अभी मान लो कि कोई खोटा काम करता है तो उसको भाई झूठ मत बोलना, हो झूठ बोलू नहीं, अब जो सत्य महाव्रतधारी है उनको आप बोलेंगे झूठ मत बोलना करके, जो बोलता होगा उसी का निषेध करेंगे ना। तो यहाँ तो जो भेद है, लेकिन वो कैसा है कि उसके माध्यम से हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं, अधिक विशेष उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए वो जानने पूर्ता हमें वो प्रयोजनवान है। उसको गुजराती में बोलते जाने लो प्रयोजनवान, जानने योग्य है बस, लेकिन वो अनुसरण करने योग्य नहीं है। यानी ऐसा कहा ना, ज्ञान और आत्मा यानी वो भेदात्मक ही है ऐसा नहीं माने है। अब यहां तो ये समझा रहे हैं कि ये तो समझने के लिए है, आश्रय करने के लिए आदर व योग्य नहीं, यानी उसका हम आश्रय करने योग्य नहीं है। क्यों कि उसे हमें अभेद आत्मा का अनुभव नहीं होगा, इसलिए उसको हेय कहा है, अभूतार्थ कहा है, अविद्यमान कहा है, असत्यार्थ कहा है, यानी जो सत्य है ही नहीं ऐसा। अभी आगे जो निचला पैराग्राफ है ना, एक समय नहीं पर्याय छे ते व्यवहार छे। अभी यहाँ अन्य अन्य ग्रंथों का रेफरेंस दिया है, रेफरेंस समझ में नहीं आवे चिंता मत करना, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग अपेक्षा से कथन किया है, लेकिन वो एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। फिर भी जहाँ जहाँ जो बात है वो बताते हैं। पंचाध्यायी मां द्रव्य ने निश्चय अने पर्याय ने व्यवहार कहा छे, पंचाध्यायीकार ने उनको इस तरह से समझाया, केवल ज्ञाननी पर्याय ए पन सद्भूत व्यवहार छे, है ना, इसलिए वो सद्भूत है, और भेद किया इसलिए व्यवहार। परमात्मा प्रकाश मां आवे छे के मति श्रुत अवधि अने मन पर्याय ज्ञान ए पन विभाव गुण छे, या गुण याने पर्याय समझना हो, ये गुण नहीं। श्री नियमसार मां पन कहूं छे के जे चार ज्ञान छे ते विभाव स्वभाव छे, अने केवल ज्ञान शुद्ध स्वभाव छे, केवल ज्ञान प्रकटे छे ते कायम रहे छे, माटे तेने स्वभाव भाव कहो, अने चार ज्ञान कायम रहता नथी माटे तेमने विभाव गुण कह्या। देखो आगम में कहीं कहीं गुण पर्याय को भी गुण कहेंगे और पर्याय को भी द्रव्य कहेंगे, तो यहाँ गुण कहा है। पर्याय को द्रव्य कहते हैं ये आप जानते हैं रश्मि बेन, पर्याय को द्रव्य कहना ऐसा कभी सुना है आपने? ये बात बराबर है, पर द्रव्य को देख के पूरा द्रव्य ये द्रव्य ही है ऐसा बोलना, पर्याय पर्याय को ही पूरा द्रव्य है ऐसा बोलना, यानी द्रव्य पर्याय के बदले में द्रव्य का उपयोग करना, ऐसा कभी आपने सुना है? देखो देखो, आप बहुत आगे जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, देखो द्रव्य गुण और पर्याय, तो शास्त्र में द्रव्य को कभी गुण भी कहा है, द्रव्य को कभी पर्याय भी कहा है। वैसे गुण को कभी द्रव्य भी कहा है और गुण को कभी पर्याय भी कहा है। वैसे पर्याय को कहीं गुण भी कहा है और पर्याय को कहीं द्रव्य भी कहा है। तो पर्याय को द्रव्य कहा है, ऐसा कुछ याद है क्या आपको? ये मेरा प्रश्न है। अश्विन भाई आप जानते हैं? नहीं? अच्छा, डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, देखो इनको ऐसा नहीं, हाँ हाँ, अभी हम कहते हैं ना, अभी हम इस पर घटाते हैं, ये है ना, ये लोभी है बहुत। तो हम किस, हाँ जब आपने बताया ये केवल ज्ञानी है हमारे भगवान कैसे, तो केवल ज्ञानी है, तो वो केवल ज्ञान उसको यहाँ गुण भी बताया, और यहाँ गुण विभाव गुण जो बता रहे हैं वो पर्याय है, क्योंकि मति श्रुत अवधि मन परे केवल ये सब पर्याय हैं, फिर भी उसको विभाव गुण कहा। तो घबराना मति कि विभाव नाम का भी गुण होता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ वो बताने की बात जुदी है, ऐसा समझना, तो हम ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी यहाँ क्या बात रही, अभी हमने बताया ना कि जैसा हमने देखा क्रोधी जीव, तो हम किसी को पूछेंगे कि भाई तू सम्यक दृष्टि है क्या मिथ्या दृष्टि है, तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मिथ्या दृष्टि जो है वो पर्याय है क्या द्रव्य है? तो अपने को पूरा पूरा मिथ्या दृष्टि मान रहे ना, पूरे द्रव्य को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं ना, ऐसा अनेक जगह ऐसी बातें आती हैं। तो अभी क्या समझा रहे हैं, देखो चौथी लाइन, ये लिखा है नियम सार में अपन कहूं छे के चार ज्ञान छे, ये विभाव स्वभाव छे, अने केवल ज्ञान शुद्ध स्वभाव छे, केवल ज्ञान प्रकटित है कायम रहे छे माटे तेने स्वभाव कहो, अने चार ज्ञान कायम रहता नथी माटे तेमने विभाव गुण कहया। लेकिन आपने पास चार चार ज्ञान है क्या? ये तो पर्याय है ना उसकी पांच, तो पर्याय को यहाँ गुण कहा, ये मैं बताना चाहता हूँ। परंतु ती केवल ज्ञान पन भेद रूप अंश रूप होवा थी तेने आई व्यवहार कयो छे केमा नियम सार मा, समय सार नी शैली एवी छे। अभी यहाँ समय सार में कौन सी अपेक्षा है ये बताते हैं, तो कहते हैं कि ते परमार्थ ने जणावे छे, यानी हमेशा समय सार में त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को ही बताएंगे। अभी आप कहेंगे एक बात बीच की रह गई, वो बताना था मुझे, मैं बल्ब रह गया। जैसा हमने द्रव्य को पर्याय रूप से कहा, वैसा पर्याय को पूरा द्रव्य कहा, वैसे पूरे द्रव्य को पर्याय भी कहते हैं, याद है इंदु बहन आपको? हाँ, कार्य परमात्मा कहो कि कारण परमात्मा कहो, ख्याल में है ना, उसमें जो कार्य परमात्मा है वो पर्याय है ना, पूरे द्रव्य को वो बता रहे। आपको क्या चाहिए था पर्याय की अपेक्षा से? कारण पर्याय है, पर्याय कैसी हो जो, हाँ कारण शुद्ध पर्याय, मैं वो बताना चाहता था, द्रव्य को कारण शुद्ध पर्याय बताया, ख्याल में है? हमने नियम सार पढ़ा था ना, उसमें था ना कारण शुद्ध पर्याय, तो पूरे हम समझते कारण शुद्ध पर्याय ने पर्याय की बात कर रहे हैं, नहीं वो तो द्रव्य की बात है। अभी जैसे हम पांच भाव देखते हैं, शव शमिक भाव, फला भाव, फला भाव, फला भाव, तो पारिणामिक भाव, वो तो द्रव्य को बता रहे हैं। चलो ये बीच में मैं बताना चाहता था वो रह गए। अभी यहाँ फिर से श्री समय सारणी चौदह, नहीं यहाँ तक नहीं आए थे हम, સમયસારની શૈલી એવી છે કે પરમાર્થને જણાવે અને અપરમાર્થનું પણ સાથે જ્ઞાન કરાવે છે. યાને વહા યે જો મૂળ દ્રવ્ય હૈ ઉસકી તો બાત બતાતે હી હૈ લેકિન ઉસકે સાથ પર્યાય કા ભી વહા જ્ઞાન કરાતે હૈ.
ऐसा बताना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी जोड़ रूप गाथाएं हैं. पहली गाथा में जैसे ग्यारहवीं गाथा में भूतार्थ की बात की है और सभी पूरा व्यवहार अभूतार्थ ही कह दिया, तो बारहवीं गाथा में बता दिया व्यवहार भी वो जाने लो प्रयोजनवान छे. कोई ऐसा पूरा उसको एकांत मत से सर्वथा वैसे ही नहीं मान ले, इसलिए दूसरी गाथा में उसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं. अभी भी ये जो बात चल रही है 46वीं गाथा में यही बात बता रहे. 44 में बताया था कि पुद्गल से ये सभी भाव उत्पन्न होते, राग वो पुद्गल का है.
45 में
हाँ, और यहाँ अभी बता रहे हैं कि ये जो व्यवहार है वो भी कार्यकारी है, क्योंकि व्यवहारी जीवों के लिए व्यवहार नए से पहले कथन करने में आएगा. ख्याल है ना? तो ऐसे बहुत सारी गाथाएं हैं, आप स्वयं भी अब बहुत सी गाथाएं हैं, आप स्वयं उस रूप से उस दृष्टि से अभ्यास करना कि एक गाथा में तो बिल्कुल निश्चय की बात करेंगे और फिर कोई पूरा ही निश्चय वो सर्वथा एकांत से नहीं पकड़े, इसलिए व्यवहार की बात अगली गाथा में कर देंगे. ये इसलिए शैली बताई उन्होंने. अभी दूसरे प्रश्न, सॉरी, ये परमात्मा प्रकाश जो लिखा है ना वो क्या है मालूम है? किसने लिखा है? योगी योगिंदु देव ने परमात्मा प्रकाश लिखा है, बराबर है. हाँ, और कौन सा ग्रंथ लिखा है? योग सार. और कौन सा? अमृता शीति नाम का एक ग्रंथ है. अशीति यानी 80 गाथा है, उसमें 80 श्लोक है अमृता शीति. चलो आगे पढ़ेंगे.
श्री समय सारणी 14 गाथा ना भावार्थ में कहूं छे के मुख्य गौण कथन सांभळी सर्वथा एकांत पक्ष न करवो, यानी कहीं किसी को मुख्य रूप से कहा होगा और किसी के गौण रूप से कथन नहीं किया होगा तो एकांत पक्ष न करवो. सर्वनयो ना कथनचित रीते, यानी किसी अपेक्षा से सत्यार्थ परानु श्रद्धान करवा थी ज सम्यक दृष्टि थई शकाय छे. क्या कहा? तो कहते हैं कि सब नयों के माध्यम से उसका जो सत्यार्थपना है उसका श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि नए जो होते हैं एक ही द्रव्य को कहो या पदार्थ को कहो अलग अलग अपेक्षा से उसका कथन करते हैं, तो एक ही नए की बात लेके सर्वथा यानी परिपूर्णतया द्रव्य वैसा ही है ऐसा कभी नहीं मानना. तो क्या कह रहे हैं? सर्व नयोना कथनचित रीते, यानी प्रत्येक नए किसी न किसी अपेक्षा से द्रव्य ऐसा ही है ऐसा कहेगा. अपेक्षा लगते तो ही कहेगा नए. तो कह रहे हैं सर्व नयोना कथनचित रीते सत्यार्थपनानु श्रद्धान करवा थी ज सम्यक दृष्टि थई शकाय छे. अर्थात व्यवहार नयनु पण यथार्थ ज्ञान करवु जोईए, पर्याय छे ज नहीं एम कोई कहे तो एनु ज्ञान खोटू छे. पर्याय छे एम ज्ञान राखीने द्रव्यनो आश्रय करे एज यथार्थ छे. अब यहां पर दो बातें हैं. यहाँ पर ऐसे कोई मत होंगे कि जो पर्याय है नहीं ऐसा मानते हैं और सिर्फ द्रव्य ही द्रव्य है ऐसा मानते हैं तो उनकी बात सही नहीं है. तो यहाँ क्या उन्होंने क्या बताया कि सर्व नयों को तुम जानो, क्योंकि प्रत्येक नए किसी न किसी अपेक्षा से स्यात यानी कथनचित यानी किसी अपेक्षा से ऐसा ही है ऐसा कहता है, लेकिन उतनी अपेक्षा लेके पूरे द्रव्य वैसा ही है ऐसा मानोगे तो धोखे में आ जाओगे. तो उसका परिपूर्ण अलग अलग नयों के माध्यम से उसको आपको जानना होगा और वो जानना ही कार्यकारी है तो ही आपको सम्यक दर्शन होगा ऐसा कहते हैं. और ये जो सिर्फ पर्याय नहीं है कहने वाले तो मालूम है कौन? हाँ, वेदांती मानते हैं, और सिर्फ पर्यायी है, द्रव्य नहीं है, ऐसा बुद्धिस्ट मानते हैं। तो एक ही नए से पूरा द्रव्य ऐसा ही है, ऐसा मानते हैं, अन्यथा नहीं है। लेकिन हम कैसा कहते हैं, एक ही द्रव्य में अनेक नयों की अपेक्षा से, किसी न किसी अपेक्षा से उसका कथन किया है, उस रूप से हमें द्रव्य को समझना चाहिए। इसलिए पर्याय छ, यानी वो नहीं है ऐसा नहीं है, पर्याय छे आम ज्ञान में राखी ने शू करू साहेब के द्रव्यनो आश्रय करवो। द्रव्यनो यानी त्रिकाली स्वभाव कहो, या कायम टिकने वाला ऐसा जो द्रव्य है स्वभाव, उसको ही, उसका ही आश्रय करे। एज यथार्थ जैन, उससे ही सम्यक दर्शन होगा। पर्याय छे, पर्याय में राग छे, एने जाने नहीं, माने नहीं, तो एकांत पक्ष थी जैसे, यानी पर्याय में यहाँ अगर हम, हमारे में कोई विभाव चल रहा है ऐसा हम मानेंगे ही नहीं, तो हम सर्वथा शुद्ध है ऐसा मानेंगे, तो ये निश्चयवासी हो जाएंगे। एक लो निश्चय लेशो तो काम नहीं चाले, निश्चय ने व्यवहारनी अपेक्षा छे। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्रीय एक बहुत बड़े प्रखर पंडित हो गए, उनका नाम फूलचंद जी था। वो उन्होंने कहा कि व्यवहार नहीं नी उपेक्षा करवी एज एनी अपेक्षा छे, यानी ये व्यवहार नहीं किस लिए है, तो उसकी उपेक्षा करने, यानी वो सच बात बताता नहीं है, उसको भूल जाओ। जैसा कोई बोलता है और बोलने बोलने में बहुत आधी बातें तो खोटी ही बोलता है, तो उसको कहते हैं ये 50% डिस्काउंट में सब ख्याल में। तो यहां ये समझा रहे हैं कि व्यवहार नहीं नी उपेक्षा करवी, एज एनी अपेक्षा छे, यानी व्यवहार ने की अपेक्षा, मतलब तो क्या अपेक्षा है, व्यवहार ने किस लिए कहा है कि उसकी उपेक्षा करने के लिए वो है। पर्याय मां जे राग छे तेनी उपेक्षा करी ने द्रव्य नी अपेक्षा करवी,
हाँ इग्नोर करो, उसको गौण करो, परंतु जान कर गौण करो, यानी उसका स्वीकार करो फिर उसको गौण करो। स्वीकार ही नहीं करेगा तो वो, तो वो उसका वो निश्चय नहीं भी सच्चा नहीं नहीं होगा।
देखो देखो, अभी ऐसा बताया हमें कि हमारा द्रव्य शुद्ध है और गुण भी हमारे शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता है। लेकिन जो अशुद्धता पर्याय की बात है ना, उसको छोड़ दो, उसको कोई देखने की गरज नहीं है, मैं शुद्ध हूँ मैं शुद्ध हूँ, तो शुद्धता को उसने स्वीकार नहीं किया। क्यों? कि अगर तू शुद्ध होगा तो तुझे कौन उपदेश देगा शुद्ध होने के लिए, तेरे पर्याय में अशुद्धता है इसलिए तू शुद्ध हो, शुद्ध हो ऐसे। यानी हमें, हम क्या कहते हैं, परमेश्वर है या हम भगवान है, और पर्याय में हमें भगवान बनना है, तो पर्याय में अशुद्धता है उसी में शुद्धता लानी है। लेकिन यहाँ तो पर्याय को ही मानने को तैयार नहीं है, तो फिर उपदेश किस बात का। इसलिए क्या समझा रहे हैं कि देखो देखो, मैं दूसरी लाइन से फिर से पढ़ूंगा, हो नीचे के नीचे से थर्ड। निश्चय ने व्यवहार नी अपेक्षा छे, यानी बिना अपेक्षा कोई भी नए मिथ्या नहीं होता है, इसलिए निश्चय ने को भी व्यवहार नहीं की अपेक्षा है। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री कहू छे ने के व्यवहार नी उपेक्षा करवी ए जेनी अपेक्षा छे, ख्याल में, यानी वहां तुम्हें निश्चय नहीं का साथ पकड़ना पड़ेगा। इसलिए पर्याय में जे राग छे, अभी राग ही नहीं है ऐसा कोई मानता हो तो क्या गड़बड़ी होगी, तो कहते राग छे तेनी उपेक्षा करीने, यानी उसका आश्रय नहीं लेने, भाई वो आपने इग्नोर कहा ना, तो यह समझना उसको आश्रय नहीं लेने, ये भी साथ में लिख लेना। द्रव्य नी अपेक्षा करवी, यानी द्रव्य का ही हमें आश्रय लेना है। व्यवहार नी उपेक्षा करी त्याज एनी अस्थि सिद्ध थी गई, क्या कहा अरे तू उपेक्षा कर रहे हैं ना, अपन किसकी, जो नहीं है उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, जो है उसी की उपेक्षा करेंगे हम। इसलिए कहते हैं व्यवहार ने उपेक्षा करी त्याज एनी अस्थि एटले एनी विद्यमानता होवापणु सिद्ध थी गई, अर्थात एनी एटली अपेक्षा आ गई, वो है इतना तो उसकी अपेक्षा है ना। हाँ, यानी उसका एक खास एक स्लोगन मैं भूल गया, स्वामी जी बताएंगे अभी आगे आएगा तो इसमें आएगा कि कहीं अन्य जगह आएगा मैं बताऊंगा, कि आपने जो बताया ना गौण करना अभाव नहीं करना है, इसके लिए भी कोई ऐसा बताते हैं, आप सही कह रहे हैं, पर वो जो पर्टिकुलर स्वामी जी के जो शब्द है ना वो याद नहीं आ रहे। चलो भाई, आ तत्व समझवा माटे मध्यस्थ थवु जोईए, मध्यस्थ थाय एने समझाए एवु छे। अभी मध्यस्थ होना यानी क्या, वितरकता लाना, ऐसी बात नहीं बता रहे, ये तो अपना ये तो अपना कोई मत होगा या अपनी कोई विशेष मान्यता होगी, उसी को पकड़ के हम रखेंगे। भाई यहाँ जो बात कह रहे हैं वो शांति से पहले सुनो, विचारो, फिर कौन सा सही है और कौन सा गलत है इसका निर्णय करो। लेकिन कोई सुनने को ही राजी नहीं है, नहीं नहीं हम कहते वही बात बराबर है, तो शू कीधु, आ तत्व समझवा माटे शू जो मध्यस्थ थवु जो ये। मध्यस्थ थाय एने समझाए, अने जे मध्यस्थ थाय एने नहीं समझाए, सीधी बात है ना। निश्चय जे शुद्ध द्रव्य वस्तु तेनो निर्णय करनार कौन छे, यानी जो पर्याय को नहीं मानते उनके लिए कह रहे, तेनो निर्णय करनारी पर्याय व्यवहार छे, नित्य नो निर्णय करनार पण अनित्य पर्याय छे। भाई क्योंकि तू आत्मानुभव करेगा वो किधर करेगा, पर्याय में ही करेगा ना, वो कहीं अन्य बाहर थोड़ी जाएगा, या द्रव्य थोड़ी अपना स्वयं का अनुभव करेगा, जो त्रिकाली द्रव्य है वो तो अपरिणमनशील है, ये पर्याय में ही अनुभव होगा। भाई बधु स्यादवादनी अपेक्षा ज समझाए एम छे, स्यादवाद यानी कथनचित किसी अपेक्षा से कहा गया, एकांत थी काई पकड़ाए नहीं, यानी एक ही अपेक्षा से पूरा द्रव्य है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो अपेक्षा देखो क्या बताया मैंने, पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू, किसी कहीं कई जगह अपेक्षा का अर्थ पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पर अभी ये जो वाक्य है ना, स्यादवादनी अपेक्षा थी, यानी विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्यादवाद ऐसा लेना, समझाए एम छे। अभी यहाँ जो ऊपर जो हमने पढ़ा था, उपेक्षा करीने द्रव्यनी अपेक्षा करवी, यानी राग छे उसको इग्नोर कर यहाँ ये बात लेना, द्रव्यनी अपेक्षा करवी यानी द्रव्य जैसा है वैसा उसको समझना, यानी उसी रूप से उसको मानना, ग्रहण करना, जानना, या वहाँ यानी जैसा द्रव्य है वैसा उसको जानना। वहां पर देखो हमेशा ये अपेक्षा का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग जगह अपेक्षा से आएगा, आप जो पॉइंट ऑफ व्यू कहते वो यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू आया,
ये दूसरे लाइन में भी अलग अर्थ से आया। देखो निश्चय ने व्यवहार ने अपेक्षा छे है ना,
हाँ उसका भी अर्थ अलग है,
वहाँ अलग है, अपेक्षा ने उसको रिक्वायरमेंट छे उसकी, मैंने आपसे इस बात की अपेक्षा, हम कहते ना आपसे हमारी ये अपेक्षा है कि आप पढ़कर आएंगे, हमारी आपसे अपेक्षा है, आशा है। तो निश्चय को व्यवहार की क्या अपेक्षा है, व्यवहार से क्या लेना देना है, तो व्यवहार को निषेध करना ही उसकी अपेक्षा आ गई ना, कि निश्चय के लिए व्यवहार चाहिए कि जिसका वो निषेध कर रही है। निश्चय ऐसा कहेगा खाली कुछ नहीं कुछ नहीं तो नहीं चलेगा,
वो संस्कृत में बोलते नेति
नेति न इति, व्यवहार ने जो
ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं, वो क्या है वो बताएगा व्यवहार, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ये व्यवहार भेद करके बताएगा। और फिर निश्चय ने कहेगा न इति, यानी ऐसा नहीं है, बस इतना ही बोलेगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वैसा नहीं है, ये भी भेद करके कथन हो गया बहुत गड़बड़ है ये अच्छा है आपने पूछा, क्योंकि जब तक हम उसकी अपेक्षा यानी सही अर्थ नहीं समझते हैं,
यानी ऐसी अपेक्षा है कि व्यवहार को पहले वहाँ खड़ा करेंगे और फिर निश्चय उसका निषेध करेगा, है ना?
तो यहाँ निश्चय को व्यवहार की अपेक्षा है, ये बात आ गई।
जरूरत है, हाँ
अब ये जरूरत है।
कैसी जरूरत? उसको निषेध करने के लिए।
यानी देखो देखो, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जरूरत होती है, क्यों?
गुस्सा
करने को। अकेला किससे झगड़ा करेगा? वैसा ये निश्चय नहीं तो उसको काटेगा ही, उसका निषेध ही करेगा, और वही निश्चय का काम है। और अपनी उपेक्षा हो जाए, यही व्यवहार नहीं की अपेक्षा है,
सफलता है।
अरे फिर वही शब्द आ गए, कैसा बताए? यानी अभी हम थोड़ा सा, मैं रफ लैंग्वेज में बताऊंगा, व्यवहार ने एक्सपेक्ट्स निषेध न टू गेट क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज यानी नलीफाई, उसको निश्चय ने उसका निषेध करेगा ना, यानी निश्चय ने विल नलीफाई व्यवहार ने, एंड दिस इज व्हाट व्यवहार ने एक्सपेक्ट्स, अपेक्षा करता है। अभी ये थोड़ा थोड़ा आप समझ लेना, नहीं तो मुझको अमेरिका में गए जैसा लगेगा। ऐसी पैक होती थी हमारी इंग्लिश में बोलते हो, क्योंकि जो हम बोल सकते हैं हिंदी में गुजराती में, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए 3 मिनट रुकना पड़ता था। क्या अभी क्या वोकैबुलरी नहीं ना उतनी अच्छी, और हम प्योर इंग्लिश में बोलेंगे तो समझते भी नहीं ना। मेरी बात सुनो, आप ए एन डी का उच्चार क्या करते हैं? एंड, वहां अलग तरीके से करते हैं, एंड ऐसा बोलते हैं। अब क्या मालूम कैसा है, वो समझ में नहीं आता अपने। चलो जाने दो। निश्चय जे शुद्ध द्रव्य वस्तु तेनो निर्णय करनार कौन छे? तेनो निर्णय करनारी पर्याय व्यवहार छे। नित्य नो निर्णय करनार पण अनित्य पर्याय छे। ये तो बात नक्की हो गई ना, यानी जो कोई परिणमन होता है वो पर्याय में होता है। अभी मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ये कौन कर रहा है? ये तो ज्ञान की पर्याय कर रही है। भाई बधु स्यादवादनी अपेक्षा थी समझाएम छे, एकांत थी काई पकड़ाए नहीं, यानी एकांत से हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पल्ले कोई बात आएगी नहीं। परंतु स्यादवादनो अर्थ एम नथी के निश्चय थी पन मोक्ष मार्ग थाय अने व्यवहार थी पन मोक्ष मार्ग थाय, यानी अपने आत्मा का अनुभव करने से भी मोक्ष मार्ग होगा और शुभ भाव करने से भी मोक्ष मार्ग होगा, इस ऐसा स्यादवाद नहीं है। गुरुदेव तो कहते थे आ तो पुदड़ी वाद छे, यानी जो सच्चा मार्ग वाद नहीं है वो पुदड़ी वाद का जो अर्थ है आप गुजराती लोग समझ जाना। व्यवहार छे बस एटलू अहीं कहेवू छे। आ शास्त्रनी 8मी गाथा में आवे छे के म्लेंछो ने स्वस्ति एटले तारू अविनाशी कल्याण थाओ, एवो अर्थ म्लेंच द्वारा ज समझ, म्लेंच भाषा द्वारा ज समझावी शकाय छे। याने क्या हो गया, कोई मुनिराज जा रहे थे तो वहां से एक म्लेंच आया, तो उसको तलवार फिलवार जो भी है दिखाया, बोला पैसा निकाल, तो उसने कहा कि स्वस्ति, तो समझा ही नहीं, बोलते मैं तो पैसा मांग रहा हूँ, ये क्या सुस्ती सुस्ती कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो भी मेरे फायदे की बात कह रहे हैं। तो फिर उसको समझाया कि भाई स्वस्ति का अर्थ कि तेरा अविनाशी कल्याण हो जाए। अरे कितना अच्छा आदमी, जिसको मैंने लूटने की कोशिश की वही मुझे कहता है कि तेरा कल्याण हो जाए, ये कोई गजब का इंसान कहो या मुनि होना चाहिए। यानी ये म्लेंज को म्लेंज की भाषा समझाए, खाली स्वस्ति कहने से हम नहीं समझेंगे। जैसा अभी अपेक्षा उपेक्षा की गड़बड़ हो रही थी ना, तो हम नहीं समझे, तो फिर उसको अपन थोड़ा इंग्लिश में ब्लेंच भाषा में बोले तो अभी जरा बात ख्याल में आ गई। इस तरह तो क्या कह रहे हैं, देखो म्लेंचों ने स्वस्ति एटले तारु अविनाशी कल्याण थो, एवो अर्थ म्लेंच भाषा द्वारा, म्लेच्छ भाषा द्वारा जो समझावी शकाय छे। તેવી રીતે વ્યવહારીઓને યાને વ્યવહારીજનોં કો વસ્તુ સ્વરૂપ યાને દ્રવ્ય કા સ્વરૂપ યાને અપને આત્મ સ્વરૂપ વ્યવહારને દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે. પરંતુ જેમ બ્રાહ્મણે મ્લેંચ થવું યોગ્ય નથી તેમ સમજનારે કે સમજાવનારે વ્યવહારને અનુસરવો યોગ્ય નથી. એ બહુ બઢિયા બાત બતાઈ હૈ ઉન્હોને યે સમજાયા હૈ કે વ્યવહારીજનો કો વ્યવહારને કે દ્વારા વસ્તુ સ્વરૂપ સમજાયા જાતા હૈ. લેકિન જૈસા સમજાને વાલા કોઈ બ્રાહ્મણ હોગા તો ઉસકો મ્લેચ હોના અચ્છા નહીં હૈ, ક્યોંકિ મ્લેચ ભાષામાં ભલે બોલે લેકિન સ્વયં હી મ્લેચ બન જાવે તો તેમ તેમ સમજનારે યાને જો સમજ રહા હૈ યાને જો શ્રોતા હૈ ઓર સમજાવનારે યાને જો વક્તા હૈ દોનોં કો વ્યવહાર વ્યવહારને અનુસરવો યોગ્ય નથી, યાને વ્યવહાર સે જો કથન ક્યા હૈ ઉસકા હી આશ્રય કરને યોગ્ય નહીં હૈ. ઇસકો હી દૂસરી ભાષા મેં 12વે ગાથા મેં કહા થા કે જાણે લો પ્રયોજનવાન છે, યાને જાણને યોગ્ય એસી યે બાત હૈ, અનુસરણ કરને યોગ્ય નહીં હૈ. તો ક્યા કહે રહે હૈ વ્યવહારને અનુસરવો યોગ્ય નથી. ત્યાં એમ કહ્યું છે કે વ્યવહારને મ્લેચ્છ ભાષાના સ્થાને હોવાને લીધે, અભી વ્યવહારને યાને મ્લેચ્છ ભાષા યાને હમ ભેદ કરકે સમજા રહે તો ભલી ભાષામાં સમજા રહે, પરમાર્થનો પ્રતિપાદક હોવાથી યાને આત્મા કો સમજાને વાલા હોને સે શું કીધું વ્યવહારને કેવો છે મ્લેચ્છ ભાષાના સ્થાને હોવાને લીધે વ્યવહારને પરમાર્થનો પ્રતિપાદક હોવાથી યાને પરમાર્થ કો યાને પરમ અર્થ કો યાને અપને આત્મા કો નિજ સ્વરૂપ કો બતાને વાલા હોને સે સ્થાપન કરવા યોગ્ય છે, યાને કહેને કે લીએ બતાને કે લીએ કોઈ હર્જા નહીં હૈ. પણ તેથી તે યાને તે વ્યવહારને અનુસરવા યોગ્ય નથી. આ તો પરમ સત્યની સિદ્ધિ થાય છે ભાઈ. ये बात समझ में आई? हाँ, अब आगे तो हम बड़े नहीं क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसमें अगर किसी को कुछ बात नहीं ख्याल में आ भी है तो आप समझा पूछ लेना.
जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकर्णमो सदा गीत हो.
विनंत